लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में भले करेरिये येसु को समर्पित रविवार 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर याद दिलाया कि येसु हमें असीमित प्यार करते हैं और हमें अपना जीवन अर्पित करते हैं। संत पापा ने कहा,
Buona domenica.
Priye bhaiyo em behno, shubh ravivar.
Questa domenica è dedicata a Gesù buon pastore.
Yeh ravivar bhale charvahe Yesu ko samarpit hai. Aaj ke susamachar paath mein ve batlate hain ki bhala gadheriya apni bhedon ke liye apne pran de deta hai. Ve is baat par itna zor dete hain ki isse teen baar dohrate hain. San Papa ne kaha,
Ma in che senso?
लेकिन गड़ेरिया किस अर्थ में अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है? दरअसल गड़ेरिया बनना खासकर यीशु के समय में सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। यह कोई ऐसा व्यवसाय नहीं था जिसमें कुछ समय निर्धारित हो, बल्कि इसका मतलब भेड़ों के साथ पूरे दिन रहना था और यहाँ तक कि रातें भी उन्हीं के साथ बितानी थी, अर्थात उनके साथ सहजीवन में रहना था। वास्तव में यीशु समझाना चाहते हैं कि वे कोई भाड़े के व्यक्ति के समान नहीं हैं, जिन्हें भेड़ों की परवाह नहीं होती, बल्कि वे भेड़ों को अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रकार यीशु हम सभी के चरवाहे हैं, हम प्रत्येक को पहचानते, हमें नाम से पुकारते हैं और जब हम खो जाते हैं तो वे हमें तब तक खोजते हैं जब तक कि हमें दोबारा नहीं पा लेते। और उससे भी बढ़कर यीशु सिर्फ एक अच्छे चरवाहे नहीं जो झुंड के साथ अपना जीवन साझा करता हो, बल्कि यीशु एक ऐसे भले चरवाहे हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है और पुनर्जीवित होकर हमें अपनी आत्मा दी है।
Ecco cosa vuol dire il Signore con l'immagine del buon pastore.
भले चरवाहे की छवि के साथ प्रभु हमें यही बतलाना चाहते हैं कि वे न केवल मार्गदर्शक हैं, झुंड के मुखिया हैं, बल्कि सबसे बढ़कर हम प्रत्येक के बारे सोचते हैं और हमें अपने जीवन के प्रेम के रूप में सोचते हैं। आइए हम इस पर चिंतन करें कि मैं ख्रिस्त के लिए महत्वपूर्ण हूँ, वे मेरे बारे चिंता करते हैं, मैं अपूर्ण्य हूँ, मैं उनके जीवन की असीम कीमत के लायक हूँ। और यह बोलने का कोई आलंकारिक तरीका नहीं है, उन्होंने सचमुच मेरे लिए अपना जीवन दिया है, वे मर गए और मेरे लिए जी उठे हैं। पर हमें लग सकता है कि यह एक अच्छा विचार है जिससे मुझे कोई फायदा नहीं, जबकि संत पापा ने कहा, यीशु हमें प्यार करते हैं और हम में वह सुंदरता पाते हैं जो मैं अक्सर नहीं देख पाता। संत पापा ने आगे कहा, भाइयों एवं बहनों, आज कितने लोग अपने आप को अपर्याप्त या गलत मानते हैं? हम कितनी बार सोचते हैं कि हमारा मूल्य उन उद्देश्यों पर निर्भर करता है जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, दुनिया की नजरों में हमारी सफलता पर, दूसरों के निर्णय पर, और कितनी बार हम छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को निराश कर देते हैं।
Oggi Gesù ci dice che noi per lui valiamo tanto e sempre.
आज यीशु हमें बतलाते हैं कि हम हमेशा उनके लिए बहुत मूल्यवान हैं और इसलिए खुद को फिर से खोजने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है खुद को उनकी उपस्थिति में रखना, अपने अच्छे चरवाहे की प्रेमपूर्ण बाहों द्वारा स्वागत किए और उठाए जाने देना, उन्होंने विश्वासों को चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा,
So trovare ogni giorno un momento per abbracciare la certezza che dà valore alla mia vita.
आइए हम खुद से पूछें, क्या मैं हर दिन उस निश्चितता को अपनाने के लिए एक क्षण ढूंढ पाता हूँ जो मेरे जीवन को मूल्य देता है? क्या मैं जानता हूँ कि प्रार्थना, आराधना, स्तुति का एक क्षण कैसे ढूंढूं, ख्रिस्त की उपस्थिति में कैसे रहूं और खुद को उनके द्वारा दुलारे जाने दूं? भले चरवाहे हमें बताते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन के रहस्य को फिर से खोज पाएंगे। हम अच्छे चरवाहे को याद करेंगे जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया है। तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
La Madonna ci aiuti a trovare in Gesù l'essenziale per vivere.
हमारी माता मरियम हमें यीशु में वह खोजने में मदद करें जो जीवन के लिए आवश्यक है। इतना खाने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Regina Celi letare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद करते हुए विश्वासियों के प्रति अपना स्नेह एवं सामीप्य प्रकट किया। 21 अप्रैल को बुलाहट के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मनाया जाता है। इसकी याद करते हुए संत पापा ने कहा,
Si celebra oggi la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
आज बुलाहट के लिए प्रार्थना का विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसकी विषय वस्तु है, हम आशा के बीज बोने और शांति स्थापित करने के लिए बुलाए गए हैं। यह कलीसिया को एक ऐसा समुदाय फिर बनाने का एक सुंदर अवसर है जो सुसमाचार की सेवा में, करिश्मे और बुलाहट की बहुरूपता की विशिष्टता रखता है। इस संदर्भ में संत पापा ने रोम धर्म प्रांत के नए पुरोहितों को बधाई देते हुए कहा,
Rivolgo di cuore mio saluto ai nuovi presbiteri della diocesi di Roma.
मैं रोम धर्म प्रांत के नए पुरोहितों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्हें कल दोपहर संत पेत्रुस महागिरजा घर में पुरोहिताभिषेक प्रदान किया गया। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। उसके बाद संत पापा ने युद्ध पीड़ितों की याद करते हुए कहा,
Continuo a seguire con preoccupazione e dolore anche la situazione in Medio Oriente.
मैं मध्य पूर्व की स्थिति पर चिंता कर रहा हूँ और उस पर दुख के साथ नजर रख रहा हूँ। मैं दावों और युद्ध के तर्क के आगे ना झुकने की अपील दोहराता हूँ। इसके बजाय बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए जो बहुत कुछ कर सकता है। मैं फिलिस्तीन और इसराइल में शांति के लिए हर दिन प्रार्थना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वे दोनों जल्द ही एक दूसरे को पीड़ा देना बंद करेंगे। और आइए पीड़ित यूक्रेन को भी ना भूलें, उस पीड़ित यूक्रेन को जो युद्ध से बहुत अधिक पीड़ित है। उसके बाद संत पापा ने आइवरी कोस्ट में एक युवा मिशनरी फादर मत्तेओ पेतिनरी की एक दुर्घटना में मौत पर दुख प्रकट किया जिन्होंने उदास सेवा का एक महान प्रमाण छोड़ा है। संत पापा ने कहा, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से प्रांगण में एकत्रित तीर्थयात्रियों तथा विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जुड़े सभी भाई बहनों का अभिवादन किया और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
चीज की कमी नहीं,
प्रभु वर
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 22 अप्रैल को वाटिकन के कंसिस्ट्री सभागार में संत पापा फ्रांसिस ने प्लोमेर के क्रिस्तीय शिक्षा के धर्म बंधुओं की महासभा सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ मुलाकात की। संत पापा ने पूजनीय जॉन मेरी डेला मेनेस और फादर गैब्रियल देशायस द्वारा निर्देशित धर्म समाज के करिश्मे अर्थात शिक्षा के माध्यम से बच्चों और युवाओं के बीच सुसमाचार प्रचार करने हेतु उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि 2019 में मनाई गई उनकी स्थापना की 200वीं वर्षगांठ उनके संस्थापकों के मौलिक अंतर्दृष्टि की ओर लौटने का एक अवसर है। आज उनका काम दुनिया भर के विभिन्न देशों में मौजूद है। संत पापा ने कहा कि वे दुनिया के उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां गरीबी, युवा बेरोजगारी और सभी प्रकार के सामाजिक संकट व्याप्त हैं। संत पापा ने उनसे आग्रह करते हुए कहा, जिनकी आप सेवा करते हैं उन लोगों के पिता बने, ऐसे पिता जो हमेशा बदलती दुनिया में ईश्वर के प्रेमपूर्ण और दयालु चेहरे को प्रतिबिंबित करते हैं। आप उदारता पूर्वक अपने आप को युवा लोगों की सेवा में लगाएं, उनकी आकांक्षाओं के प्रति चौकस रहें, साथ ही अपने जीवन के सर्वोच्च नियम मसीह की ओर मुड़ते रहें। संत पापा ने कहा कि ला मेनेस ब्रदर्स का आह्वान वहां जाना है जहां लोग नहीं जाते हैं, यानी परिधि पर, और उनसे युद्ध, उदासीनता और हमारी फेंकी हुई संस्कृति से पीड़ित लोगों के लिए आशा का स्रोत बनने का आग्रह किया। कलीसिया के भीतर उनके स्थान को समझाते हुए संत पापा ने कहा कि कलीसिया एक परिवार है जहां हर कोई मानवता के उद्धार के लिए अपने विभिन्न करिश्मे और व्यवसायों के साथ सहयोग करता है। संत पापा ने कहा कि वे परमाध्यक्ष की प्रेरिताई के प्रति धर्म बंधुओं के संतोषजनक विश्वास और लगाव पर भरोसा करते हैं और उनसे उन धर्म प्रांतों में सहयोग करने का आह्वान किया जहां वे अपनी सेवा देते हैं। साथ ही उन्होंने उन्हें अहंकार, अलगाव, विभाजन और गपशप की किसी भी भावना से बचने की चेतावनी दी। आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस जीवन संपदा को बचाने व पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में जागरूक करता है। पृथ्वी दिवस पर प्राकृतिक संसाधनों की सही इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिन संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी पीढ़ी को बहुत सारी संपत्ति विरासत में मिली है, लेकिन हम ग्रह की रक्षा करने में विफल रहे हैं। हम शांति की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हमें अपने सामान्य घर पृथ्वी, जो बर्बाद हो रही है, के कारीगर और देखभालकर्ता बनने के लिए बुलाया गया है। # पृथ्वी दिवस। उधर फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एक शरणार्थी शिविर में इजरायली सैन्य अभियान में 13 लोग मारे गए। इसराइली रक्षा बलों ने कहा कि उनके सैनिकों ने पिछले गुरुवार से शुरू हुई शिविर की सफाई के दौरान 10 आतंकवादियों को मार डाला। इस दौरान कम से कम 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इसराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से वेस्ट बैंक में हिंसा तेज हो गई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल ने पिछले साल अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक और यरूशलेम के पूर्व में 450 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है। अन्य घटनाक्रमों में तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा संघर्ष और संभावित शांति प्रयासों पर चर्चा करने के लिए इस्तांबुल में हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख से मुलाकात की। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और हमास प्रमुख इस्माइल हनीयेह ने भी गाजा पट्टी में मानवीय सहायता वितरण की गारंटी की आवश्यकता और क्षेत्र में शांति प्रक्रिया से संबंधित मामलों पर बातें की। एर्दोगान ने फिलिस्तीनी मुद्दे को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का आह्वान किया और कहा कि तुर्की फिलिस्तीनियों की दुर्दशा को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में सबसे आगे लाने के लिए अपने राजनयिक प्रयासों में लगा हुआ है। उन्होंने गाजा को मानवीय सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि अब तक 45,000 टन से अधिक की आपूर्ति की जा चुकी है। उधर यूक्रेनी और पश्चिमी नेताओं ने रूस के खिलाफ युद्ध हारने की बढ़ती चिंताओं के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा यूक्रेन के लिए पारित एक अत्यंत आवश्यक सैन्य सहायता पैकेज का स्वागत किया। यूक्रेन के लिए 61 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता के अलावा सदन ने एक व्यापक विदेशी सहायता पैकेज के हिस्से को मंजूरी दे दी, जिसमें इसराइल और अन्य सहयोगियों के लिए लगभग 34 बिलियन डॉलर शामिल थे। मास्को की चेतावनी के बावजूद सहायता पैकेज सशस्त्र संघर्ष को और बढ़ा देगा। एक द्विदलीय वोट में अमेरिकी सदन में 210 डेमोक्रेट और 101 रिपब्लिकन ने यूक्रेन को रूस की हमलावर सेना के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए अधिक बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता को मंजूरी दी। हालांकि 112 रिपब्लिकन, जिनमें से अधिकांश जीओपी पार्टी के विधायक हैं, ने इसके खिलाफ मतदान किया, जो उस मुद्दे पर रिपब्लिकन के बीच गहरे विभाजन को रेखांकित करता है। अमेरिकी सीनेट मंगलवार को विधेयक पर विचार शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पैकेज पर तुरंत हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाने का वादा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि उनका देश फंडिंग के बिना युद्ध हार जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी सांसदों के फैसले के लिए आभारी हैं। यूक्रेन हमारे देश और इसकी स्वतंत्रता, लोगों और जीवन शैली के लिए समर्थन के हर संकेत की सराहना करता है, जिसे रूस मलबे के नीचे दफनाने का प्रयास कर रहा है, जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। अमेरिका ने इस युद्ध के पहले दिनों से ही अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और पूर्व कथनीयता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।